स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग चार दिनों के लिए, आज जिसमें दूसरा दिन है, एक प्रासंगिक प्रवचन ले रहे हैं जो बोध सार नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं नरहरि स्वामी। क्या नाम है? नरहरि स्वामी द्वारा विरचित बोध सार, ज्ञान का सारा सार निकाला है। है तो बहुत ऐसे ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, वो भी लगभग 15 दिन लगेगी इसमें, जो विस्तार से है, इतना विस्तार से योग वशिष्ठ में भी नहीं है। बहुत चिंतन अच्छा किया है और भी बहुत लीलाओं का भी बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है। चलो वो सब तो प्रसंग बस है, ऐसे कभी कभी प्रासंगिक प्रवचन होते रहेंगे बीच बीच में, तो एक एक प्रसंग को लेते जाएंगे, क्योंकि पूरा ग्रंथ पकड़ना हो तो कम से कम 5-7 साल लगेगा। नहीं, 5-7 साल मतलब एक महीने का प्रवचन हो गए तो 5-6 साल लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, क्योंकि प्रबोध सुधाकर ही लगभग 4-5 साल से चल ही रहा है। शायद इस बात समाप्त हो जाएगा, शायद, लेकिन तो आज दूसरे दिन हम लोग विचार कर रहे हैं कि उपदेश सोजशी। जीवन में उपदेश हम लोग बहुत सुन लेते हैं, उन उपदेशों का एक पूरा लक्ष्य क्या है, निचोड़ क्या है, इनको मात्र, जिसे भगवान शंकराचार्य जी ने उपदेश पंच रत्नम, याद है ना, वेदो नित्य मधीयताम तद उदितिम कर्म समनुष्ठीयताम अथवा साधना पंचकम के नाम से 5 श्लोक लिखे थे। लेकिन ये श्लोक प्रारंभ से लेकर के, मतलब ब्रह्मचर्य की अवस्था से लेकर के समाधि तक है। 5 श्लोकों में उन्होंने पूरे जीवन का क्या किया है, निरूपण कर दिया है। तो नरहरि स्वामी ने इन 16 श्लोकों में पूरे जीवन के बारे में नहीं बताए हैं, ज्ञान के उपदेशों का मात्र निरूपण किया। कौन सा? बचपन से लेकर के करो, ऐसा कुछ करना न करना, यहां कुछ नहीं, केवल जान क्या करना है, सारे उपदेशों का एक लक्ष्य क्या है। तो आप लोग श्रुति का वाक्य जानते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्त मुक्तय निर्विषयम स्थितम। मन ही मनुष्यों के बंधन का भी कारण है और मन ही मनुष्यों के मुक्ति का भी कारण है। जब मन विषयों में आसक्त होकर के विषयों की कामना शुरू कर देता है तो वही मन बंधा हुआ है। और यदि मन विषयों से आसक्त नहीं है, अर्थात विषयों से आसक्त है अथवा नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी कि मन में विषय परक कोई कामना है ही नहीं? भाई पहचानते ही ना, हमारा मन किसी विषय में भी आसक्त है, आसक्त है अथवा नहीं है, उसकी पहचान क्या है? कि यदि उस विषय की कामना उठती है तो समझ लेना हमारा मन उस विषय में आसक्त है, अथवा उस विषय में हमारा मन आसक्त नहीं है, इसकी पहचान क्या है? संसार में बहुत पदार्थ हैं, हमारी आसक्ति जिसमें होती है उसी की कामना उठती है, और जिसकी आसक्ति नहीं होती है उसकी भूल करके भी कामना उठती नहीं है। तो बंधाय विषयासक्त है, जो मन विषयों में आसक्त होकर के विषयों की पाने की कामना कर रहा है वह मन संसार में बंधा हुआ है। और मुक्तय मुक्ति के लिए निर्विषयम स्मितम, मन को विषय से रहित, विषय से रहित माने विषय की कामना से रहित मन को कर लो तो अभी आपको मुक्ति पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, अभी आप मुक्त हो। तो हमारे जीवन का एक अंतिम निचोड़, अंतिम लक्ष्य, विषयों से मन को, मन से विषयों को, या मन में रखे हुए विषयों को किसी न किसी तरीके से उसको हटाना है, उसकी कामना को समाप्त करना है। जब तक उसकी कामना को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपनी व्यापकता का अनुभव, कामनाएं ही हमें संकीर्ण बना देती हैं, कामनाएं ही हमें क्या बनाती हैं, संकीर्ण बना देती हैं, परिच्छिन्न बना देती हैं। जैसे हमारी उन विषय की कामना समाप्त हुई तो हम व्यापक हो जाते हैं। अब उन विषयों की कामनाओं के हटाने के कोई न कोई तरीके हैं, नहीं तरीके है बताओ, कोई न कोई युक्तियां ही नहीं युक्तियां हैं। तो युक्तियां कितनी है, युक्तियां कितनी है याद है ना, दो प्रधान युक्ति है, एक हट से और दूसरा क्रम से। दो प्रधान युक्ति है, एक कौन सा, हट से और दूसरा क्रम से। क्रम से मुक्ति पाने के चार तरीके हैं। एक पहला अध्यात्म विद्या की प्राप्ति है। अरे माने जिस विषयों की तरफ तू दौड़ रहा है सुख की अपेक्षा करके, उस विषय में सुख जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में सुख है ही नहीं, ऐसा बार बार उस मन को समझाओ और समझने के बाद उस मन की उस विषय के प्रति दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि यह भी युक्ति न काम करे तो दूसरी युक्ति है, थोड़ा महापुरुषों के साथ निवास करो। तो महापुरुषों का निष्प्रिय है विषय से रहित जीवन देखोगे तो अपने अंदर भी एक बल मिलेगा कि जब ये लोग जी सकते हैं उस विषय के बिना तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो आपके मन में जो विषयों की आसक्ति को हटाने का एक हिम्मत नहीं बन रही थी, वह हिम्मत महापुरुषों के सानिध्य में रहने से आप में वह करेज, वह साहस आ जाएगा। यदि यह भी काम न कर सको तो तीसरा काम क्या है, दोष दर्शन। तीसरा काम क्या है, दोष दर्शन। लेकिन इतना दोष न देखना कुछ विषय से द्वेष हो जाए, इतना ही द्वेष दोष देखना कुछ विषय से हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए। हमारे लिए नहीं उपयोगी, दूसरे के लिए होगा, भाई हमारे काम का नहीं है, दूसरा कोई ले जाए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। यदि इससे भी काम न चले तो उस विषय से श्रेष्ठ कोई वस्तु है, उस वस्तु का आलंबन उसको पकड़ा दो, ब्रह्म का चिंतन करना शुरू कर दो, तो संसार का चिंतन धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाएगा। यदि इस पर भी न काम करे तो चौथा एक वही चौथा ये चार हो जाए तरीके, जो दूसरा तरीका हट द्वारा, हट माने जिद पूर्वक उस विषय को छोड़ दो। दो चार दिन वह मन परेशान करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, वह मन उसके बिना भी रहने की कला सीख जाएगा। बताए एक महात्मा थे, उनके पास एक, पहले तो महात्मा लोग कैसे होते थे बेचारों के पास, क्या बोले आपकी भाषा में, गरीब बोले हमारी भाषा में, निष्प्रिय थे, नहीं वही आप लोग भाषा कर रहे थे महाराज जी वो है, तो निष्प्रिय थे, उनको अपेक्षाएं थी नहीं, कम से कम में गुजरा करते थे। तो एक उनके पास कोई मिट्टी का बर्तन था तो टूट गया, मिट्टी का बर्तन क्या हुआ, पानी भरने के लिए टूट गया। तो जय दयाल गोयनका हनुमान साहब पोद्दार, ये लोग पूरे सेठ ही थे, हाँ तो गीता प्रेस में ऋषिकेश गए थे, तो महात्मा जी उनके पास गए और संतों की सेवा भी करते थे, भले इतने बड़े विद्वान थे और धनी भी थे लेकिन संतों के प्रति उनका एक भाव था, प्रेम था। तो उन्होंने कहा महाराज जी कमंडल हमारा टूट गया है, एक कमंडल खरीदना है, एक कमंडल दिलवा दो, पानी भरने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या हुआ, जानते हैं बड़े लोग होते हैं, उनके पास आने जाने वाले बहुत लोग होते हैं, तीन चार दिन पांच छह दिन हो गए, उनको बुद्धि से वो बात निकल ही गई, याद ही नहीं आया। और सात दिन के बाद उनको याद आया, अरे उस महात्मा ने तो क्या कहा था, एक कमंडल मेरे से कहा था। तो महात्मा बुलाया, कहा वो भाई कमंडल तुम ले जाओ। कहा महाराज जी कमंडल के बिना भी रहना मेरे को आ गया है, दो चार दिन कमंडल की आवश्यकता तो महसूस हुई, इन दो चार दिन सोचा आज मिलेगा कल मिलेगा परसों मिलेगा, लेकिन जब आपने नहीं दिया या आपका ध्यान नहीं रहा होगा तो कमंडल के बिना भी रहने की कला मुझे आ गई है, अब कमंडल कोई आवश्यकता रहने गई है। तो कभी कभी किसी विषय के साथ रहते रहते उस विषय के साथ रहने का एक संस्कार बन जाता है। आप भी देखो, हम भी यहां से जाएंगे ना, कभी भी हम जानते हैं तो दो चार दिन कुछ लोगों का फोन आएगा शुरू शुरू में, दो चार दस दिन, और दस दिन के बाद क्या हो जाएगा, सब भूला जाते हैं। तो दो चार दस जो देखो निष्प्रिय प्रेम रहेगा है, और जो एकदम पवित्र प्रेम रहेगा वो तो आपको हमेशा याद करता रहेगा, लेकिन जो बस तात्कालिक प्रेम रहेगा तो थोड़े समय के लिए तो क्या होगा, स्थिति रहेगी, अब बाद में तो कौन सर्वेश चैतन्य जी याद नहीं आ रहा है, कहाँ कौन से महाराज जी है, कहाँ है, इसी वृत्ति आ जाती, मैंने देखा। तो कहने का अभाव, उस विषय का त्याग कर दो, पूरी तरह से त्याग कर दो, तो चार छह दस पंद्रह दिन उस विषय की याद आपको सताएगी सताएगी, कोई भी हो। हम तो कहते हैं एक लड़की है, जब मायका छोड़ करके कहाँ जाती है, ससुराल जाती है, तो दस बीस दिन क्या करती है, चार बार फोन करेगी, घर में बात करेगी, और जब वहां रहना सीख जाती है तो फोन याद ही नहीं आता है किसको फोन करना किसको नहीं याद करना, ये हो जाता है। तो हर व्यक्ति के साथ उस विषय से दूर रह जाओगे तो धीरे धीरे उस विषय की आसक्ति अपने आप समाप्त तो हो जाएगी। लेकिन यह सब काम करना किसको है, आपको स्वयं ही करना है, क्योंकि आपने ही चिंताएं इकट्ठी की है, तो इन चिंता आपने ही इन चिंताओं को कमाया हुआ है, और कमा करके सारी पूंजी अपने अंतःकरण में भरे पड़े हो, इसलिए इन कमाई गई चिंताओं को हटाने का भी काम कौन करेगा, आप ही करोगे। युक्ति बताना मेरा अपना काम है, और उस युक्ति के द्वारा उन सारी चिंताओं को दूर फेंकना ये किसका काम है, आपका काम है। हाँ, एक महापुरुष और हुए हैं, अच्छे प्रवचनकार रहे, वो भी एक विषय को हटाने का एक तरीका था, उस विषय को भोग करके वो का उस वृत्ति को हटाई दो, लेकिन उस विषय में बड़ा खतरा है। क्या है उस विषय में, विषय को भोगने में गए जाना तो आसान है, लेकिन विषय भोग के बाद यदि हटेंगे तो उसका संस्कार कहीं न कहीं गहरा पड़ जाता है, और बार बार वह संस्कार उधर उस विषय की तरफ आपको खींचता ही खींचता है। तो जिसमें यदि सामर्थ्य होवे, भाई देखो हम तो बार बार कहते हैं अभिमन्यु महाराज घुस तो गए कहां चक्रव्यूह के दरवाजे में, और सबने कहा चिंता मत कर कूद मैं निकाल लूंगा, लेकिन कोई निकालने के लिए पास आया क्या, सबने सरेंडर कर दिया, अब तू घुसा है तो तू ही निकल। ऐसे संसार के विषय भोगों में घुसना तो क्या है, बड़ा क्या है, आसान है, लेकिन निकलना, अब बाहर से भले कोई निकाल ले, मैं तेरी बात बता दूं, आपने किसी की हत्या कर दिया कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपकी अंतर आत्मा बार बार रात में सपना बन करके वो आदमी भूत बना के नहीं बना, लेकिन भूत बन करके वो आदमी आपको हमेशा डरवाता रहेगा, आप उस संस्कार से आजाद, इसलिए भोगों में जाकर के विषय भोगों से हटना ऐसी गलती, क्योंकि वो विषय भोग का संस्कार यदि बन गया तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल, इसलिए शास्त्र विहित जो तरीके बताए गए हैं उन तरीकों से ही अपने जीवन का हम निर्वाह करें। यही बताया, युक्ति के द्वारा हम अपने इस मन रूपी घट को विचारों के प्रवाह रूपी विचारों का जो भंडार है उस भंडार से हम खाली करें, फिर ब्रह्म को पाने के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता है ही नहीं, ब्रह्म तो ठसाठस पहले से ही भरा पड़ा है, बस उन विषयों के भरे हो जाने के कारण उस ब्रह्म की अनुभूति हो ही नहीं रही, ब्रह्म को लाना नहीं पड़ेगा, ब्रह्म को देखने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, बस मन से हटाओ तो संसार ब्रह्म की अनुभूति अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए जो भी साधनाएं बताई जाती है ना, ब्रह्म को पाने की साधना नहीं बताई जाती है, ईश्वर को पाने की साधना नहीं बताई जाती है, ये संसार को हटाने की साधनाएं बताई जाती है, और संसार के हटते ही उस परमात्मा की अनुभूति स्वयं ही हो जाएगी। इसलिए हे महाबुद्धिमान शिष्य, तुम इन सारी चिंताओं को छोड़ दो, जगत का क्या होगा, तुम्हारे बनाए बिगाड़े कुछ बिगड़ने बनने वाला तो है ही नहीं, अरे जगत बनाने वाला जगत की चिंता करना आता है। हम मनुष्य अपनी मनुष्य की चिंता कर लेते हैं तो भी अशांत ही रहते हैं, और उस परमात्मा को ना 84 लाख योनियों में पशु पक्षी कीट पतंगा हमारी चले तो एक भी मछली जीवित न रहे, एक भी मच्छर जीवित न रहे, एक भी चूहा जीवित न रहे, लेकिन परमात्मा जानता है इस सृष्टि में सबकी कहीं न कहीं कोई न कोई उपयोगिता है और सबको वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जीवित रखता है। तो सबको वह जब विश्वम्भर पालन कर रहा है तो जगत की रक्षा भी वह करना। लेकिन आप लोग कहते हो ना महाराज जी आप जैसे सब बाबा बन गए तो जगत का क्या होगा, जगत कैसे चलेगा। तो रमन महर्षि का वही शब्द आता है, जगत ने कभी आपके सामने आके कहा है क्या कि सब बाबा बन जाओगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। अरे तुम उसकी चिंता करना ही बंद कर दो, जगत अपनी चिंता अपने आप ही कर लेगा, अपनी व्यवस्था अपने आप ही कर लेगा। त्वया अर्जिता मिमान चिंता, यह सारी चिंताएं तूने ही अर्जित की है, तूने ही कमाई है। बद बोलो को अन्य परित्यजेत, इस चिंता को दूसरा छोड़ने वाला कौन है। अरे भाई इस चिंता रूपी रोग की एक ही दवाई है, उस वस्तु का उस परमात्मा का चिंतन करो, सबसे बढ़िया दवाई है। चौथा है दोष दर्शन बाद चौथा है कि अपने मन को उस परमात्मा में लगा दो तो संसार अपने आप हट जाएगा। अथवा जिद वाला चिंता आख्यम रोगम एव परित्यज, चिंता नाम का जो रोग है ना भाई, चिंता क्यों आ रही है उस विषय के साथ रह करके, उस विषय की कामना पैदा हो रही नहीं हो रही है, तो इस बीमारी को ही दूर कर दो भाई, उस विषय को ही क्या कर दो छोड़ क्या हटा दो, तो उस विषय से होने वाली जो बीमारी है वह बीमारी आना ही क्या हो जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा भोग का सामान न उठेगी भोग की इच्छा, और थोड़े दिन के लिए भले भोग की इच्छा प्रबल होने के कारण पैदा भी हो जाए लेकिन कुछ दिनों के बाद उस भोग के बिना भी उसका जीवन जब जीना शुरू हो जाएगा तो उस विषय की कामना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए बताया जिद पूर्वक उस विषय का ही त्याग कर दो तो विषय की कामना भी अपने आप छूट जाएगी। अथवा तात चिंता आख्यम रोगमेव, ये चिंता नामक रोग जिस विषय के संसर्ग से हो रहा है उस रोग के जड़ उस विषय का ही पूरी तरह से क्या कर दो, त्याग कर दो। इसको मैं बताऊं, मैं अजमाया, मैं जो अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा, एक बार मैंने मोबाइल में 15 रुपए का उजलाया इंटरनेट पैक, तो उसमें 100 MB मिला, कितना मिला, अब 4-5 दिन चला रहा हूं, 100 MB खर्च ही नहीं हुआ, कहाँ खर्च हुए रेलवे में इधर उधर खर्च ही नहीं हुआ, अब 100 MB जितना पैसा खर्च किया हूं उस 100 MB को पूरा खर्च करने के लिए फालतू का, कहीं इस मंदिर का फोटो देख रहा हूं, कभी उस मंदिर का फोटो देख रहा हूं, कभी कुछ वो कर रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, और उस फालतू के खर्च के चक्कर में सही बताऊं न जाने कौन सा ऐसा बटन दब गया कि बैलेंस से 100 रुपए मेरे कट गए। सही बता रहा हूं, मैं अपने जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, केवल 15 रुपए का सदुपयोग करने के लिए, क्या 15 रुपए से मिला हुआ 100 MB का सदुपयोग करने के लिए फालतू का कुछ न कुछ देख रहा हूं, और देखने में न जाने कौन सा ऐसा बटन मेरे से दबा तो बैलेंस से 2 या 3 बार 160 मतलब करीब 150-200 रुपए यूं ही निकल गए। हमने कहा भाई ऐसा 15 रुपए का पैक तो बहुत महंगा पड़ गया, इसलिए 100 MB का उपयोग करो, इससे अच्छा जलवायु ने सबसे बढ़िया रहेगा। सही बता रहा, तो न रहेगा बांस न बजेगी। अभी भी कभी मन किया जल कल गया बैलेंस दिलाने के लिए तो मन किया कि डाल के काट दो ट्रेनों का देखूं, अब ना किसी से पूछना पड़ेगा, हमका किसी से फोन करके पूछ लूंगा 4 रुपए में बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा, लेकिन वो डालूंगा फिर 100 MB का उपयोग करूंगा और फिर कोई बटन दब गया तो फिर मेरा बैलेंस, इस बात मैंने 500 का बैलेंस दिलाया वो सारा कट गया तो और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसलिए उस चिंता रूपी रोग जिस बीमारी से पैदा होती है उसको खाना ही क्या कर दो भाई, आप लोग नहीं करते क्या भाई, जिसको जिस चीज की एलर्जी है जिस चीज को खाने से क्या है, जानते हो रोग फैलेगा, बीमारी आएगी, तो उस चीज को खाना ही क्या कर दो, बंद कर दो, दूर हटा दो, और कौन सी आपत्ति है। लेकिन बस हमारी यही समस्या है, हम जानते हैं ये वस्तु दुख भी देती है, अशांत भी करती है, अस्पताल भी जाना पड़ता है, तभी उस विषय का हम त्याग, यहां तक जीवन मौत के बीच में भी कभी कभी किसी वस्तु से झूलना पड़ता है तो भी हम उस विषय का त्याग नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई त्यागना तो आपको ही पड़ेगा। अथवा हे तात चिंता आक्षम रोगम, चिंता नामक रोग जिस वस्तु के संग्रह से तुम्हें पैदा हो रहा है, उस रोग को ही तुम क्या कर दो, छोड़ दो, और क्या हो जाओ, सुखी हो जाओ। महात्माओं का एक मौज वाले दृष्टांत होते हैं। एक महात्मा जी गए थे यहाँ कुंभ मेला में, तो थोड़ा पैसा लेके गए थे। बाबा लोग तो पैसा कहाँ खोजते हैं, पुराने लोग, कहीं जेब में रहा होगा या यहाँ रहा होगा, तो बार बार उनका हाथ कहाँ जाए, जेब में ही जाए, कि पैसा है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, पैसा है कि नहीं। थोड़ी देर के बाद घूमते रहे, हाथ यहाँ लगाए रहे कि कहीं इधर खुजलाना हुआ हमारी तरह, तो क्या कहते हैं कि इसी बीच पैसा कट गया, गायब हो गया। एक टेक्निक भी है, आप मनसा देवी में जाना हरिद्वार में, अलाउंस वाला बोलेगा आप लोग कृपया अपनी जेब पे ध्यान रखें, सावधानी से रखें, जेब कतरों से सावधान रहें, तो व्यक्ति की तुरंत दृष्टि कहाँ जाती है, जेब में। जेब कतरा देखता रहता है कि ये हाथ में लगाए तो पक्का इसकी जेब में पैसा है, वो सब मिले होते हैं, सच बता रहा हूँ, और तुरंत तो जेब काटेगा। और जैसे उसकी जेब कटा तो किसी ने कहा भाई हमारी जेब कट गई, तो कहा उसने अलाउंस किया था क्या जेब कतरों से सावधान रहना, कहा तो किया था तुरंत मैंने अपना हाथ, वो उसी समय ध्यान देता है, ध्यान देना, और उसी समय जेब कतरे की दृष्टि वहां जाती है, इसके जेब में पैसा है तभी वो जेब में रखा। तो जैसे उसका पैसा कटा हो बेचारे रोना शुरू कर दिया, जो भी था तो महात्मा थे, और महात्मा तो पैसा कट गया नाचना शुरू कर दिए बीच चौराहे पे। लोगों ने पूछा क्या बात हो गई, तो कहा यार पैसा था वो तो कट गया इसलिए नाचना हो, तो कहा पैसा कट गया तो रोना तो ही नाचना चाहिए, कहा इस पैसे के कारण बड़ी चिंता लगी थी, जब देखो हाथ कहां यहां यहां लगा रहता था, कहां गया हाथ, कहां गया पैसा, ये न रहेगा पैसा न रहेगी इसकी चिंता, तब निश्चिंत तो होकर के कम से कम मेला घूमूंगा तो अच्छी तरह से घूमूंगा। तो कहने का भाव इतना है कि इस चिंता नाम की जो बीमारी है उस बीमारी को ही क्या कर दो, यह चिंता नामक बीमारी जिस विषय के संग्रह से पैदा हो रही है उस विषय के संग्रह रूपी उस बीमारी को ही क्या कर दो, दूर कर दो भाई, तो निश्चिंत हो जाओ, मैं ते कहता हूं। लेकिन हम लोग निश्चिंत कहां हो पाते हैं, वहीं रहेंगे जिएंगे। कभी कभी हम गृहस्थों से बोलते भी हैं, महाराज जी बेटे नहीं पच रही है, बहुत तंग करता है, हमका नहीं पच रही इसमें आपत्ति क्या, उसको अलग कर दो, और क्या अपनी अलग जिंदगी जी, तुम अलग जिंदगी जी, अपना बनाए खाए ये भी नहीं कर सकते हैं, दूध लगाए भी करेंगे साथ भी नहीं रह सकते हैं, ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या बताओ भाई। जिस व्यक्ति के साथ रहने में आपको शांति हो रही है, सरदर्द हो रहा है, जिस व्यक्ति के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो उस व्यक्ति से सीधे कह दो भाई तुम्हारे साथ करने उन्हें अशांति सी हो रही है, या तू दूसरे कमरे में, हम दूसरे कमरे में रह जाते हैं, या उसके सामने जाने की आवश्यकता ही क्या पड़ गई है कि अपने मन को शांत करो। लेकिन हम यह सब करने में समर्थ होते ही नहीं है, तो भाई इस रोग को दूर कर दो, अथवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यदि न दूर करें तो कहते हैं बहुत चिंता है, क्या है आगे बढ़ते हैं, वर्धिता वर्धते चिंता त्यक्त्वा नश्यति सत्वरम् ईदृशेन आपि रोगेण दुर्धियो मरणम गता। वर्धिता वर्धते चिंता, उसमें नहीं है भाई, उपदेश सोलसी जीवन में ग्रहण करने वाले 16 मात्र श्लोक हैं, इन श्लोक से अपना कल्याण कर लो, तो तात्कालिक 4 दिनों का ये प्रवचन है। तो वर्धिता वर्धते चिंता, जगत विषयक चिंताओं को जितना बढ़ाते जाओगे, वर्धिता जितना इन चिंताओं को बढ़ाते जाओगे, ये चिंताएं कम तो होती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती है, वर्धते चिंता, जितना बढ़ाते चले जाओगे ये चिंताएं रबर की तरह उतनी ही बढ़ती जाती हैं। इसमें अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक लगा हुआ है, कितना भी खींचो टूटने का नाम लेती नहीं है। आपके पास तो जो रबर है ना, रबर देखा ना, उसको खींचो इलास्टिक एक निश्चित सीमा तक तो खींचेगा, इसके बाद खींच लिया तो टूट जाएगा। अरे चिंता रूपी इलास्टिक इतनी गहरी हो गई है, इसको जितना खींचते जाओ जितना खींचते जाओ टूटने का नाम लेती क्या? 10 लाख हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 10 अरब हो जाए, यहां बन जाऊं यहां बन जाऊं, ए अनंत संग्रह और कामनाओं की सीमाएं तो अनंत है। अरे आप पुण्य कर्म करके कहां कब्जा करना चाहते? स्वर्ग में। स्वर्ग में भी अभी पेट नहीं भरा है, ब्रह्मलोक में जाऊंगा, ब्रह्मलोक में भी नहीं पेट भरा है, कहां कहां पहुंच जाओगे? भगवान मालिक है, लगता सारे। अब अरे देख लो आप पृथ्वी पे ही देख लो, पृथ्वी पे इतना जीत लिया अभी पेट नहीं भरा है, अब कहां चल रहे हैं? मंगल पे। मंगल पे फ्लाइट की बुकिंग होना शुरू हो गई है, कराने वाले करा रहे हैं, टिकट भी ले लिए हैं, बिक गए हैं टिकट भी, बिक गए हैं। हाँ आपको अखबारों में आया है, अभी जाने का पक्का कोई नहीं है ही नहीं, क्या रहेंगे कैसे खाएंगे क्या करेंगे, लेकिन टिकट भी वहां जाने के बुक हो गए। कहां? मंगल में घर बनेंगे, चंद्रमा में घर बनेंगे। अरे अभी पृथ्वी को संभाल लो फिर आगे जाओ। लेकिन बढ़ता बढ़ते चिंता, ये चिंता रूपी रोग जितना बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कभी ये समाप्त होने वाली है ही नहीं। अब खुद सोचो, सोचना चाहिए, जब बच्चा छोटा था तो भी तो चिंता है, लेकिन जब बड़ा हो गया तो चिंता होनी चाहिए क्या? लेकिन फिर और चिंता बढ़ जाती है। अब चलो विवाह हो गया, अपना कमाने लगा, अब तो माताओं को निश्चिंत हो जाना चाहिए, लेकिन तब और चिंता हो गई है, खाया कि नहीं खाया, पत्नी ऐसी आए ध्यान नहीं देती है, वो तो ऐसा बेवकूफ है कि अब तुम यहां बैठे बैठे उस बेटे को जो 100,000 किलोमीटर दूर है उसने कह दिया हाँ मम्मी खा लिया, तो तुम विश्वास कर लोगी हाँ बेटा ने बोल दिया तो खा लिया होगा। अब खाया कि नहीं खाया क्या भरोसा बताओ? अरे भूख लगेगी तो खुद ही क्या करेगा, खा ही लेगा, काहे को तुम चिंता कर रहे हो? अरे दवाई ले लेना, उसको दिखा देना, ये किया कि नहीं किया। अरे ये चिंताएं तो भगवान मालिक हैं। त्यक्त्वा नश्यति सत्वरम्, यदि इन चिंताओं को छोड़ दो ना तो चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए सिद्ध हुआ चिंता की वृद्धि और ह्रास में यह चिंता करने वाले के अधीन है। चिंता करने वाला चाहे उसको बढ़ा सकता है, और चिंता करने वाला उसको चाहे नष्ट कर डाले, ये उसके ही अधीन है। इदृशेन अपिरोगेण वह, इतना आसान सी बात साधारण मनुष्य भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी दुर्धियो जो दूषित बुद्धि वाला व्यक्ति है, इन चिंताओं का त्याग नहीं करके मरणम गता बार बार मरता है, क्योंकि कामनाओं से ही एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में जन्मता और मरता रहता है। जैसे घर में आग लगी, घर में चारों तरफ क्या लगी, आग लगी, घर से बाहर निकलने का मार्ग होने पर भी धन पुत्र वस्त्र आदि के लोभ के कारण क्या करता है, खुद जल मरता है। जबकि क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलता क्या, अरे कुछ समेट लें, और उसी में वो खुद जल के मर जाता है। इस प्रकार भाई दुर्बुद्ध लोगों ने इस मरते वक्त भी नहीं छोड़ पाते, सच बता रहा हूं, जबकि जानते हैं कि मृत्यु के समय कोई भी तिनका यहां से साफ है। हम इस कथा को रोज समझाते हैं कि हमें जीना तो सही बताऊं आया नहीं, क्या आया? अरे रो के जीना, कोई जीना है क्या? राग द्वेष मेरी तेरी गुस्सा आंखें त्योड़ियां चढ़ी हुई अहंकार के साथ जीना, कोई जीना है क्या? अपने सामने किसी को हम देख नहीं रहे हैं और किसी को देखते ही जल भुन जा रहे हैं, ये कोई जीना है क्या? लेकिन कम से कम जीना नहीं आया तो शांति से मरना तो सीख लो। लेकिन हम शांति से मरना भी नहीं जान पाते, जबकि मृत्यु के काल में हम जानते हैं कि यहां की कोई भी वस्तु मेरे साथ जाने वाली है ही नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी बुलाओ, यहां सिग्नेचर करूं, ये करूं वो करूं, उस बेटी बुलाओ उस पोते बुलाओ, उसको फोन किया कि नहीं किया। अरे इन्हीं का चिंतन करके यदि मर भी गए तो सही बताऊं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिसका चिंतन करके फिर मरे ना उसी का बेटा अथवा उसी का पोता बनकर के फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए यदि शांति से जी नहीं सकते हो तो शांति से मरना, अरे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, कहीं मर गया तो अरे उसकी भी चिंता छोड़ देना, मैं बार बार कर डॉक्टर क्या बचा लेगा क्या, बल्कि सही बताऊं डॉक्टर शांति से मरने भी नहीं देते, मानो न मानो क्यों न, वो गिरीश भाई मरने देते हैं क्या शांति से? किसी डॉक्टर के पास जाओ, दो नली ऊपर और दो नली नीचे, और किसी का गला काट करके इधर कर देगा, किसी का इधर काट देगा, अब इस तरह से वो करके बचा लेगा क्या आपको? बल्कि मान लो 10 दिन की जिंदगी ज्यादा कर भी देगा तो कौन सा कदम तीर मार लोगे 10 दिन जी करके, मेरे को बता दो 10 दिन आपके दुख ही तो बढ़ाया है, इसलिए 10 दिन पहले मत जाओ बगिया है, क्योंकि शांति से मरोगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो व्यक्ति अभी तक कुछ नहीं कर पाया अब 10 दिन में जी करके क्या कर लेगा मुझे बता दो। इसलिए शांति से कम मरना सीखो, मरना माने इस शरीर से मैं बुद्धि बड़े प्यार से छोड़ करके, संसार से मन बुद्धि छोड़ करके, अपने इस चित्त को उस परमात्मा में अथवा निर्विकल्प समाधि में लगा करके यदि शरीर छोड़ दिया तो पक्का मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई मुक्ति और बंधन तो आपके अपने अधीन है, हाथ में है, आप तो चाहे बंध जाओ अथवा चाहे मुक्त हो जाओ, इसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर तो सत्ता दे देगा, बस आपके हृदय में जैसे संस्कार होंगे वह परमात्मा क्या करेगा, उन संस्कारों को सत्ता दे देगा, और सत्ता करके वो संस्कार वृक्ष बन करके एक दूसरा शरीर बना लेंगे। भाई बीज में संस्कार होता है वृक्ष बनने का, और जैसे पानी मिलता है, क्या मिलता है, पानी मिलता है, अब इस बेचारे पानी का दोष क्या है, उसी पानी के संसर्ग से नीम तैयार हो जाएगा, उसी के पानी के संसर्ग से ईख तैयार हो जाएगा, उसी के पानी के संसर्ग से मिर्ची तैयार हो जाएगी, इसमें पानी का कोई दोष है क्या? ऐसे परमात्मा सारे बीजों को क्या देता है, एक सत्ता तो देता है, लेकिन संस्कार यदि आपके भीतर पड़े होंगे तो जैसे संस्कार पैदा होंगे वैसा वृक्ष, वृक्ष माने वैसा शरीर आप बना लोगे, जैसे भोग के संस्कार होंगे वैसे ही शरीर की हमें प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपका बीज ही भुना हुआ हो, बोलो भाई, तो लाख पानी डालते रहो, लाख मिट्टी डालते रहो, क्या पेड़ पैदा हो जाएगा क्या? तो इस बीज को ही भून डालो, संस्कारों को भून डालो, जिसमें अंकुर होने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। ये भूनना न भूनना अधीन किसके है? अब कहोगे भगवान करेगा, उसकी इच्छा होगी, अरे भाई वही बता दे, ये कर्ता के अधीन है, तुम इसको समाप्त करो ना। कमराज जी कामना के बिना जीवन भी क्या जीवन है, आशा ही कहते दुख, आप लोग तो आशा ही जीवन है, क्या बोलते हो, आशा ही यही बोलते हो ना, आशा ही जीवन है, ऐसा लिखा रहता है कोटेशन कहीं कहीं मैंने देखा। हाँ सही बात, आशा ही तो जीवन की एक वो है, एक बेल से दूसरी बेल, दूसरी बेल से एक कामना से एक योनी से दूसरी योनी, दूसरी योनी में तीसरी योनी। लेकिन भाई इस आशा के साथ रहते हुए, आशा माने किसी का आशा नाम हो तो नाराज ना होना, कामना, इस कामना का, कामना के साथ रहते हुए आपको कोई सुख मिला क्या? इसे जिसके साथ रहते हुए आपको सुख नहीं मिल रहा है उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो महाराज जी इस कामना ने, इस आशा ने हमें कौन सा दुख दिया है? तो इस दुख को बता रहे हैं पांचवें श्लोक में, कर्कशा, बड़ा बढ़िया नाम दिया क्या है, कर्कशा, कर्कशा कलहा कृत्या, बड़ी विशेषता है किसकी, आशा की, कामना की, हा? कर्कशा कलहा कृत्या बंध्या नित्य मंगला त्यजताम कामना चंडी भुज्यताम मुक्ति सुंदरी। ए जो कामना है, जो आशा है, यह कैसी है, कर्कशा है, बड़ी ही कर्कशा है, इसका स्पर्श होते ही अंतःकरण में दुख का अनुभव होने लगता है नहीं, कामना आते ही क्या आएगा, क्रोध है, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते, कामना आते ही आपकी वृत्ति आपका अंतकरण शांत जाता है, अशांत हो जाता है, आप सोचो तुरंत शांत हो जाता है। सही बता रहा हूं, कोई भी कामना हो, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, सम्मान की, कोई भी कामना उत्पन्न होवे तो समझ लेना ये कामना रूपी जो चंडी है ना, चंडी स्त्री भयानक स्त्री है, बड़ी कर्कशा है, स्पर्श होते ही इस कामना का अंतःकरण में स्पर्श होते ही अंतःकरण बड़ा बेचारा दुखी हो जाता है और क्या करती है, कलहा, दिन रात लड़ाई कराने वाली है, दिन रात क्या करती है, झगड़ा, क्योंकि सारी झगड़े का मूल, सारे युद्ध का मूल कौन है, कामना ही तो है, मैंने चाहा था मेरे को वस्तु नहीं मिली, दूसरा उठा ले गया, लगाई भाई रुक्मणी को चाहता था कौन, शिशुपाल, और उठा ले गए कौन, कृष्ण, और दोनों के बीच में क्या हो गई, कितना भयंकर दुश्मनी पैदा हो गई, तो कलह करने वाली कौन थी, कामना ही तो, यदि शिशुपाल के मन में कामना होती नहीं तो कोई ले जाता क्या फर्क पड़ता, बता, तो सारी कलह की जोग है कौन है, कामना, हमने इच्छा किया था यह मिलेगा और हमें वह वस्तु मिली नहीं, बस लड़ाई युद्ध शुरू, तो सारी लड़ाई की जोग कौन है, कामना, और कितने नहीं, कृत्या, कृत्या राक्षसी है ना, मारने वाली, मारिका, कृत्या माने क्या हुआ, मारिका मारने वाली है, कहता इस कामना के स्पर्श को ही पा करके व्यक्ति जन्म मृत्यु के भंवर में फंस जाता है, मारने वाली नहीं, जिसे हमारी कोई कामना है उस कामना के साथ हम मर गए तो फिर जन्म और फिर मरण, तो ये मारने वाली भी और पैदा करने वाली भी कौन है, यह कामना नामक राक्षसी है, इसलिए ज्ञानी लोग इसको बोलते हैं बंध्या, क्या, लेकिन कामना से बेटे तो पैदा होते हैं, कामना से बेटे पैदा होते हैं, क्रोध पैदा होगा, मिल नहीं मिली तो क्रोध है और मिल गई तो लोभ है, ये बहुत बेटे पैदा हो जाते हैं, लेकिन इन बेटों से काम चलने वाला है ही नहीं, इस कामना जो है सृष्टि से लेकर के आज तक सुख रूपी पुत्र को उत्पन्न कर नहीं पाई है, और सुख रूपी आनंद रूपी पुत्र के उत्पत्ति से ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, ऐसे दुख देने वाले बेटे पैदा भी हो जाएं तो ऐसे बेटों से न पैदा होना ही बेटा अच्छा है कि नहीं अच्छा, बताओ, शास्त्र में बताया गया ना कि पुत्र से ही मुक्ति मिलती है, तो कौन से पुत्र से बताओ भाई, ये संसार के पुत्रों से, यदि संसार के पुत्रों से मुक्ति मिले तो कुकर और सूकर पहले मुक्त हो गए होते, स्वर्ग पहुंच गए होते, नहीं, और जितने बाबा लोग थे उनका तो कोई बेटा वेटा तो है ही नहीं ना, ये सब कहां पहुंच जाते, नरक पहुंच जाते, तो किस पुत्र से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान रूपी पुत्र से मुक्ति मिलेगी, न कि ये संसार की, एक महात्मा कहते थे ये पुत्रों को उर्दू में बोलते हैं औलाद, क्या बोलते हैं, औलाद का मतलब जानते हैं क्या है, औलाद, औलाद और क्या, औलाद, औलाद, बोझा और लादते जाते हैं, आपको क्यों महाराज जी, सही बताऊं, आप मानो न मानो, पहले आदमी 50 साल तक कमाता था, कितने साल तक, आप भले नाराज हो जाओ लेकिन यथार्थ में बता रहा हूं, 50 साल तक कमाता था, खूब मेहनत करके, मैंने बताया कमाने में झूठ बोलना, छल करना, कि बिना तो व्यक्ति कर ही नहीं सकता व्यवहार, जब बच्चा 50 साल का हुआ तो बेटा कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का, 25 साल के बाद बेटा खुद कहता था, पिताजी आपने जी जान मेहनत करके बहुत कमाया, हमें पाल पोस करके क्या किया, इतना बड़ा किया, अब कमाने की सारी जिम्मेदारी किसके कंधे पे, अब आप भजन करो, आपको जो खर्चा चाहिए मैं दे दूंगा, आपको इन सारी जिम्मेदारियों से मैं आज से आपको क्या करता हूं, मुक्त, मेरी मां का खर्चा कौन उठाऊंगा, मैं, नाते रिश्तेदारियों का खर्चा कौन उठाऊंगा, मैं अब आपको एक ही काम करना है, अपने परलोक को सुधारने के लिए क्या करना है, प्रेमपुरी सत्संग भवन में आना है। लेकिन आज के बच्चे आने देते हैं क्या? तुम प्रेमपुरी चले जाओगे, दुकान में कौन बैठेगा? और तुम्हारे दुकान बैठने से कम से कम एक मजदूर की वेतन बचता ही नहीं बचता है। तो किसी न किसी रूप में, और ये बताऊं, बेटा आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है और दादाजी खुद ही अपनी चाबी अपने जेब में रखना चाहते हैं, वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल है। अपना अधिकार वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कल मैंने अपना अधिकार छोड़ दिया तो मेरे को शायद पूछेगा कौन? इसलिए न बाप का बेटे पे विश्वास है और न बेटे का बाप पे विश्वास है। अब ऐसे विश्वास ही जिंदगी को जी रहे हो, बताओ कोई सुख मिलेगा क्या? सही बता रहा हूं, पति का पत्नी पे विश्वास नहीं है और पत्नी का पति पे विश्वास नहीं है, बेटे का बाप पे नहीं, बाप का बेटे पे नहीं। पता नहीं चाबी दे दिया, नहीं खिलाया पिलाया तो क्या करूंगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, विश्वास है क्या? इसलिए मेरे भाई, आज तक इस कामना ने सदपुत्र नहीं पैदा किया। कौन सा सदपुत्र? ज्ञान रूपी सुख रूपी पुत्र को आज तक इसने पैदा किया ही नहीं है, इसलिए बंध्या ही है। हाँ, लोभ रूपी पुत्र को पैदा किया है, क्रोध रूपी पुत्र को पैदा किया है। ऐसा पुत्र न पैदा करती तो ठीक ही था, ऐसे पुत्र पैदा करने से भी बांझ रहना ही अच्छा था। लेकिन फिर भी सुख रूपी पुत्र के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोला है? बंध्या। नित्यम अमंगला, इसलिए यह नित्य ही अमंगल है। अमंगल माने क्या हुआ? इसके आ जाने से चैन का दर्शन, सुख शांति का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो जाता है। जिसका मुंह देखते ही बड़ा मुंह बिगड़ जाता है, ऐसी अमंगल स्वरूपा है। कौन? यह कामना। इसलिए मेरे भाई, त्यजताम कामना चंडी, इस कामना रूपी चंडी को आप क्या करो? छोड़ दो ना, क्यों इसके पीछे पड़े हुए? जो हर पल तुम्हें क्या देती है? दुख देती है, तंग करती है, परेशान करती है, इससे कुछ मिलने वाला भी है ही नहीं, कोई आशा है ही नहीं, तो इसके साथ क्यों तीर्थ में रहते हो? महाराज फिर रहे किसके साथ? कहते भुज्यताम मुक्ति सुंदरी, किसका भोग करो? मुक्ति रूपी सुंदरी का तुम भोग भोगो, मुक्ति रूपी सुंदरी के साथ शांति से रहो। क्यों? क्योंकि मुक्ति रूपी सुंदरी ने बड़ी कोमल स्पर्श वाली है, कर्कस नहीं है। कैसी है? एकदम इससे उल्टा स्वभाव वाली है। यह कैसी है? कोमल स्पर्श वाली है। तब यदि आपको मुक्त हो गए ना, तो संसार के सारे विषय आपको दुख नहीं देते हैं। ईश्वर की कृति देखना, दो सृष्टियां हैं पंचदशी में, एक जीव सृष्टि, दूसरी कौन सी सृष्टि है? ईश्वर की सृष्टि। तो जीव की सृष्टि जो कामना है, मैं और मेरापन है, वही दुख देता है। ईश्वर की सारी सृष्टि को देख करके आपके मन में भी कामना न पैदा होवे, तो सारी सृष्टि आपके मनोरंजन का हेतु बन जाती, साधन बन जाती है, तो कोमल स्पर्श वाली हो जाती है। इस सारी सृष्टि को देख करके आपको बड़ा सुख मिलता है। इतना ही नहीं, वह तो कलहा थी, लड़ाई करने वाली थी, और यह क्या है? अमृता, अमरता को प्रदान करने वाली है। कहते बंध्या भी नहीं है, यह है मुक्ति रूपी सुंदरी ज्ञान रूपी पुत्र को पैदा करेगी, या सुख रूपी पुत्र को पैदा करेगी। इसलिए नित्य मंगल रूपा है, इतने नहीं सारी कामनाओं को नष्ट करने वाली है। ऐसी जब परिस्थिति है, तब भी न जाने आदमी कौन से गुण के लोभ में आकर के इस कामना रूपी चंडी के पीछे पागल बना हुआ है। उसमें उसको कौन सी अच्छाई दिखती है, आज तक मुझे समझ में आया ही नहीं है। इसलिए मेरे भाई, इसका त्याग करो और किसका भोग भोगो? मुक्ति रूपी सुंदरी का भोग भोगो, उसी से ही आपको सुख रूपी पुत्र की प्राप्ति होगी और आपको अमरता की प्राप्ति वही कराएगी। ये कामना से व्यक्ति अमर हो नहीं, कामना तो एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में, क्योंकि अनंत भोग हैं। अनंत भोगों को आप सोचो इस शरीर में भोग सकते हो क्या? जनैः पंडित इत्युक्तः प्राप्नोसि परमं सुखम्, मनसा कर्मणा वाच भव पंडित एव तत्। जनई पंडित इत्युक्त है, संसार में यदि कोई आपको पंडित बोल देंगे, उसे आजकल तो पंडित क्या हो गया है, गली हो गया है, नहीं नहीं हो गया। जैसे पहले नेताजी बोले तो सम्मान का शब्द था, आज किसी को नेताजी बोल देवे तो क्या करता है, लगता है गाली दे रहा है। चलो जो भी है, तो कहने का कोई आपको कहे आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, क्या बोले आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, तो आपको बताओ सुख मिलता नहीं मिलते मेरे बता दो। जनई है पंडित इत युक्त है, अरे आप तो बड़े संयमी हैं, आप तो बड़े त्यागी हैं, आप तो बड़े संतोषी हैं। यदि ऐसे शब्द आपके प्रति कोई सांसारिक व्यक्ति उच्चारण करता है, बताओ आपको सुख मिलता है नहीं मिलता, बताओ। प्राप्नोति परमम सुखम, बड़ा सुख मिलता है, जबकि आप अंदर से जानते हो मैं संतोषी संतोषी नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी मानी नहीं हूं, लेकिन ऊपर से ही कोई ज्ञानी बोल देवे तो भी सुख मिलता नहीं मिलता। जब ऊपर के आडंबर मात्र से झूठे ज्ञानी का लबादा पहनने से यदि आपको इतना सुख मिलता है, तो मेरे भाई मन से कर्म से वाणी से तुम असली पंडित बन जाओ न, असली ज्ञानी बन जाओ न, तो कितना सुख मिलेगा ये सोच लेना। जब झूठा ही ज्ञान का कोई आरोपण कर देवे आपके ऊपर, जबकि आप जानते हो कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, तब भी आपको इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है, यदि आप सचमुच ज्ञानी बन गए तो बताओ क्या आनंद मिलेगा, आप कभी कल्पना कर सकते हो क्या। एक महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं, कोई चोर चोरी करके भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, राजा की सिपाही, तो कहते चोर कबीरदास जी की कुटिया में घुस गया, कहा महाराज जी बचा लो। महाराज जी ने एक लाल कपड़ा दिया, उसको उड़ा दिया। क्या दिया, लाल कपड़ा दिया और उसको क्या किया, उड़ा दिया, कहा बैठ जा इसे जाप कर। पुलिस वाला आया, कहा यहां कोई घुसा क्या, कहा भाई यहां तो बाबा ही लोग हैं और तो कोई है ही नहीं। और पुलिस वाला अंदर गया और उस चोर को क्या किया, प्रणाम किया, प्रणाम करके पुलिस वाला चला गया। चोर ने सही बताओ सोचा, देखा मैं झूठ मूठ का बाबा बना था, झूठ मूठ का सन्यासी बना था, तो भी पुलिस वाला मुझे छोड़ दिया, प्रणाम करके चला गया। यदि मैं सचमुच का यदि बाबा बन गया तो क्या स्थिति मेरी होगी। बस एक वृत्ति ने उसके जीवन को क्या किया, एकदम परिवर्तन कर दिया, और जो ऊपर से ढोंगी बाबा बना था वो सचमुच का क्या बन गया, असली बाबा बन गया, और संसार में उसका अच्छा प्रतिष्ठा हुई, नाम हुआ। तो कहने का भाव मात्र इतना है, अरे भाई हम तो यहां सत्संगी बनते नहीं बनते हैं, अरे झूठे सत्संगी कह देता है तो भी अरे सत्संगी है भाई, बड़े अच्छे संस्कारी हैं, भले हमारे अंदर जो संस्कार है या नहीं है, यदि आप सचमुच के वैसे संस्कार वाले हो जाओ, ब्रह्मा का वृत्ति वाले हो जाओ, तो आपको कितना सुख की प्राप्ति होगी आपने कभी कल्पना किया है। प्यास से ढोंग करना क्या कर देवे, बंद करके अंदर से असली ज्ञानी बन जाएं, असली तत्वज्ञ बन जाएं, तो देखो आपको उस स्वरूप की उपलब्धि हर पल हर क्षण होती रहेगी। इसलिए लबादा झूठ का आडंबर का हम क्या करें, हटावें और अपने उस स्वरूप में सचमुच की, सच बताओ सचमुच हमारा स्वभाव भी वही है, हम सचमुच के हमारा स्वभाव भी क्या है, ज्ञानी का ही सचमुच स्वभाव है, हम तो अज्ञानी का बल्कि ऊपर लबादा लादे हुए हैं, उल्टा हो गया, ध्यान देना, हम असली में सधुए ही हैं, क्या है असली में हम लोग, आप सब लोग भी क्या हो, असली में क्या हो, ब्रह्मरूप ही हो, साधु हो, लेकिन लोगों ने आपको साधु ये सब कह करके क्या कर दिया है, उल्टा ढोंग ला दिया है। हम आपको जो हैं वही बनाना चाहते हैं, जो आप हैं नहीं ने, जो संसारियों के कहने से आपने अपने आप को वह मान बैठे हो, उस झूठे आडंबर को हम हटाना चाहते हैं। आप शरीर नहीं, शरीर नहीं तो शरीर के धर्म नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ये किसके धर्म है, शरीर के धर्म है। ये आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थी बानप्रस्थी सन्यासी नहीं, मनुष्य पशु नहीं, देव यक्ष गंधर्व नहीं, आप तो शिव स्वरूप हो, शिव स्वरूप हो, अपने आप को अपने इस स्वरूप में अनुभव करो, जानो, वही आपका असली रूप है। आपने गलत से अपनी पहचान आपने बना करके, हम चोर बन गए, हम डकैत बन गए, हम ब्राह्मण बन गए, हम सब एक ठगों का अनेक रूप धारण कर लिए हैं, ये तुम्हारा बहुरूपिया वाला रूप है, लेकिन असली रूप इन सारे रूपों से मेरा अलग ही है। सचमुच यदि इस रूप में आप निष्ठ हो जाओ तो आपको स्वाभाविक ही बड़ी परम शांति की प्राप्ति होगी। वह मेरा रूप कैसा है इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। आज जानते हैं आज महा शिवरात्रि है, आज इसे ज्ञान का आविर्भाव हुआ है। किसके बीच में? किसके बीच में? ब्रह्मा और विष्णु, मालूम है कला हुआ दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। तो हजार साल तक ब्रह्मा ऊपर गए और नीचे कौन गए? विष्णु गए, लेकिन आज पार नहीं पता कर पाए, तो आकर के स्तुति करते हैं। तो जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था वह दिन कौन है? आज का ही दिन था। तो आज हम तो सोचते हैं आपके भीतर भी वह ज्ञान रूपी ज्योति क्या होवे? प्रकट होवे। और आपकी जो चित्त रूपी कौन है? विष्णु। और बुद्धि रूपी जो ब्रह्मा होवे उसकी स्तुति करना शुरू कर देगा। किसकी? तो आपकी शिवरात्रि क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। आज शिवरात्रि के इस अवसर पर शिव जी के अशिवरात्रि का और विशेष महात्म्य इस पुस्तक से। शिवरात्रि का असली तात्पर्य क्या है? सायंकाल है ना, छह बजे से, छह से साढ़े आठ या नौ जो भी होगा, एक अभिषेक होगा, शिव महिमन का पाठ होगा, शिव तांडव का होगा, रुद्राभिषेक तो पहले ही हो जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं कि चारों पहर की कथा शिवरात्रि की एक ही पहर में कह देंगे, ठीक है ना। और शिवरात्रि का शिव के एक एक अंगों का विशेष अर्थ क्या होता है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, जो हमने भी कभी नहीं सुना था। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मैंने जाना, आपको भी आज सुना दूंगा। यदि आएंगे तो आप लोग अभिषेक में आ सके तो अच्छी बात है, टेरेस पे हा? और ठीक है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।